मेरे नौजवान साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत जिस विषय पर हम लोग लगातार बातें कर रहे हैं, मैं उसी विषय को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़े से अलग रूप में। बस थोड़ी सी प्रतीक्षा करें, क्योंकि आज मेरे पास एक और खबर है। पहले उसकी चर्चा मैं करना चाहूंगा, और खबर है भारतीय अभिलेखागार को लेकर, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। एक छोटी सी खबर छपी है, लेकिन उस खबर को बेस बना करके एडिटोरियल कमेंट्स किए गए हैं। मैं आपको कमेंट्स प्रोवाइड भी कर रहा हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय सहारा के जो एडिटोरियल कमेंट है इसको लेकर के, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, उसे आप देख लेंगे। राष्ट्रीय अभिलेखागार सीधे राष्ट्रीय अभिलेखागार कहलाता है। जब मैं दिल्ली में था तो मैं कई बार राष्ट्रीय अभिलेखागार जाता था, नेशनल म्यूजियम भी जाता था, मतलब ये मुझे अच्छा लगता था। दोस्तों, हमारा जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है, डेफिनेटली आपकी संस्कृति का जो सिलेबस है उसका एक हिस्सा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से आप देखेंगे कि इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। लेकिन चूंकि इस बार एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा इसको लेकर उठा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्री और मेंस दोनों दृष्टि से अब ये जो संस्थान है आपके लिए थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो प्लीज इसे आप थोड़ा ठीक से तैयार कर लेंगे। ठीक से तैयार करने का मतलब ये नहीं कि आप नोट्स बनाए वो करें, बस एक बार दो बार अच्छे से पढ़ लेंगे, दो चार पांच मिनट दस मिनट उसके बारे में सोच लेंगे, इसी से आपकी बात बन जाएगी। कुछ बातें यहां जो इसको लेकर के महत्वपूर्ण हो सकती हैं, वे मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली बात कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1891 में हुई थी, 1891 में, और उस समय कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी, क्योंकि उस समय कलकत्ता राजधानी थी, और इसकी स्थापना की गई थी इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के नाम से। इंपीरियल रिकॉर्ड यानी कि जो ब्रिटेन का साम्राज्य है, ब्रिटेन, उसके दस्तावेज इसमें रखे जाएंगे, यानी कि सरकारी दस्तावेज, उस समय की जो सरकार थी उसके दस्तावेज यहां रखे जाएंगे। बाद में फिर आपको मालूम है कि 1911 में राजधानी शिफ्ट हुई, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी शिफ्ट हुई, तो अभिलेखागार भी यहां शिफ्ट कर दिया गया। वर्तमान में इसका नाम अब राष्ट्रीय अभिलेखागार है। दोस्तों, इसका एक जो रीजनल ऑफिस है वो भोपाल में है, वहां भी मुझे जाने का अवसर मिला है, मैं वहां भी जाता रहता था। लेकिन इसके तीन और ऑफिसेज हैं जिन्हें रिकॉर्ड्स सेंटर कहा जाता है। तीनों के नाम थोड़ा सुन लें, क्योंकि प्री में कभी कभी इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उसमें से एक है भुवनेश्वर में, एक है जयपुर में, और एक है पुदुचेरी में। तीन इसके रिकॉर्ड सेंटर हैं। अब जिसको लेकर के अभी यह संस्थान चर्चा में आया है, उसे थोड़ा सा जान लीजिए। अभी एक बात पता लगी कि इस संस्थान में 1962, 1965 और 1971 के युद्ध के रिकॉर्ड नहीं है। आपको मालूम है कि चाइना पाकिस्तान के साथ युद्ध वाला ये पीरियड रहा है, इसके रिकॉर्ड नहीं है। यहां तक कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है उसके भी रिकॉर्ड नहीं है। आपको मालूम है कि सरकार की जो फाइल्स होती हैं और जो दस्तावेज होते हैं उन्हें बहुत ही सुरक्षित रखा जाता है, ताकि आने वाली पीढ़ी को काम आ सके, शोध के रूप में काम आ सके, इतिहास लेखन के रूप में वो काम आ सके, और ये सब हमारे मस्तिष्क के एक सुरक्षित दस्तावेज हैं, आप कह लीजिए। दुनिया के सारे देश ऐसा करती हैं। लेकिन इतने महत्वपूर्ण जब रिकॉर्ड अभिलेखागार के पास नहीं मिले, तो डेफिनेटली ये चर्चा का विषय बना, और चर्चा का विषय ही नहीं बल्कि उससे ज्यादा कहीं यह चिंता का विषय बना। कितने महत्वपूर्ण काल के पीरियड्स के और घटनाओं के रिकॉर्ड अगर हमारे पास नहीं है, तो फिर दूसरी चीजों के बारे में क्या कहा जा सकता है। तो जब आप एडिटोरियल कमेंट पढ़ेंगे तो कुछ चीजें आपको और क्लियर होंगी। दोस्तों, ये जो अभिलेखागार है, जो हमारा संस्कृति विभाग है, उसके अंतर्गत काम करता है, और ये खासकर एक एक्ट बना है, पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट 1993, उसमें इसके बारे में बताया गया है कि ये किस किस तरीके के काम करेंगे। अब इस अभिलेखागार के साथ जो प्रॉब्लम है, या कह लीजिए इसकी अपनी जो सीमाएं हैं, हमें सीमाएं कहने चाहिए, वो ये हैं कि ये अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता। जैसे अलग अलग मंत्रालय हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के, तो अब उन मंत्रालय और डिपार्टमेंट की जिम्मेदारियां बनती हैं कि वे अभिलेखागार को दस्तावेज सौंपें। अपनी तरफ से अभिलेखागार उन्हें दस्तावेज सौंपने को बाध्य नहीं कर सकता। मतलब यह तक देखने में आया कि बहुत से ऐसे मंत्रालय हैं, विभाग हैं, जिनके कोई दस्तावेज है ही नहीं अभिलेखागार के पास, तो ये एक तरीके से बहुत चिंता करने वाली बात है। इसके बाद अब देखते हैं कि सरकार क्या निर्णय लेती है, कोई और नया एक्ट लेकर के आती है, कोई नियम कानून बनाया जाता है कि जो हमारे मंत्रालय और जो हमारे विभाग हैं उनके लिए अनिवार्य कर दिया जाए कि वो दस्तावेज सौंपें। लेकिन यहां आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी, एक एक्ट है जिसके बारे में आप जानते हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1972, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1972, यानी कि जो सरकार है वो ये निर्णय ले सकती है कि नहीं, ये जो रिकॉर्ड हैं ये हम पब्लिक डोमेन में नहीं भेजेंगे, इनका सीक्रेट रहना बहुत जरूरी है, जिसे आप गोपनीयता कह सकते हैं, इन्हें ही हम कहते हैं क्लासिफाइड रिकॉर्ड, क्लासिफाइड, जिन्हें क्लासिफाइड कर दिया जाता है उन्हें फिर सरकार पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं कराती, लेकिन उसकी भी एक व्यवस्था होती कि कुछ निश्चित सालों के बाद उन्हें पब्लिक को दे दिया जाता है कि ठीक है अब आप देख सकते हैं। अमेरिका में तो लगभग शायद ये नियम ही है कि 25 साल के बाद कोई भी जो डॉक्यूमेंट क्लासिफाइड है वो डीक्लासिफाइड हो जाता है, पब्लिक को अवेलेबल हो जाता है। तो कुल मिलाकर के ये फ्रेंड्स की ये जो टॉपिक है इसे आपको थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, और अब आगे इस पर जो भी घटनाएं घटित होती हैं, जो भी आर्टिकल्स एडिटोरियल कमेंट्स आएंगे, प्लीज उस पर आप अपनी निगाह रखें। दोस्तों अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। हम संगम काल की बात कर रहे थे, और इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि संगम काल से संबंधित जो प्रश्न पूछा गया है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इसे कैसे सॉल्व किया जाए, पावर ऑफ एलिमिनेशन के तहत हम ये बातें कर रहे हैं। उसी के तहत मैंने आप सबसे अभी तक चर्चा की है कि जो आपके पढ़ने का जो तरीका होता है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है पावर ऑफ एलिमिनेशन को डेवलप करने के लिए। दोस्तों आज मैं जानबूझकर आपके सामने वे पॉइंट्स रख रहा हूं जो हमने अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए हैं। हमने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को लेक्चर प्रोवाइड किए हैं, और साथ ही साथ उस लेक्चर पर बेस्ड कुछ पॉइंट्स प्रोवाइड किए हैं, हर लेक्चर के साथ कुछ पॉइंट्स हैं, और वो पॉइंट्स इस तरीके से बनाए गए हैं कि इन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद आप उस लेक्चर को याद कर सकें, और इस पॉइंट्स में जो भी प्री एग्जामिनेशन और मेंस की तैयारी को लेकर के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए वे कवर हो जाएं। यहां जो मैं आपके सामने वो पॉइंट्स रख रहा हूं उनका पर्पस बहुत सीधा साधा है, और वो ये कि सुनने के बाद शायद आपको ये अंदाजा हो कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ें तो देखिए आपके पास तीन विकल्प हैं। पहला, आप नोट्स ही न बनाएं और अपने बुक्स को ही अंडरलाइन करते चले जाएं, जहां भी आपको दूसरी इंफॉर्मेशन मिलती है हाशिए पर आप लिखते हैं, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप उस पर इंडिपेंडेंटली नोट्स बनाएं, अपने नोट्स तैयार करें, और तीसरा तरीका है, ये भी नोट्स का ही तरीका है, लेकिन उस पर केवल आप पॉइंट्स पॉइंट्स नोट करते चले जाएं। मुझे पॉइंट्स पॉइंट्स वाला ज्यादा सूट करता था, तो मैं कुछ पॉइंट्स नोट कर लेता था, अदरवाइज मैं सीधे किताब से ही पढ़ना पसंद करता था, अलग से नोट्स नहीं बनाता था। तो हम लोगों ने अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को ये पॉइंट्स प्रोवाइड किए हैं, लेकिन पॉइंट्स लिखते समय आपकी ये समझ होनी चाहिए, दो समझ बहुत जरूरी है। नंबर वन, कि पॉइंट्स इस तरीके के हों कि पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज छूटे नहीं। दूसरी बात कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट है, आपके पॉइंट्स उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाले हो। जबरदस्ती की अगर आप भर्ती कर लेंगे पॉइंट्स में, तो इतने सारे पॉइंट्स आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे कि पता लगा कि जरूरत की चीजें मिस हो रही हैं, तब तो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा, फिर तो फायदा क्या होगा। तो यदि आप में इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तो डेफिनेटली फिर मुझे लगता है कि पॉइंट्स वाइज नोट बनाना बिल्कुल वरदान जैसा साबित होता है, क्योंकि वो दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से मौजूद रहते हैं। और दूसरी बात कि रिवाइज करने के लिए ये कितने आसान हो जाते हैं, एकदम फटाफट आप रिवाइज कर सकते हैं, कई कई बार आप रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज करने का मतलब है कि आप दिमाग में फैक्ट्स को अंडरलाइन कर रहे हैं। दोस्तों इससे अद्भुत रूप से आपकी क्षमता बढ़ेगी एलिमिनेट करने की। तो आइए संगम काल पर जो हम लोगों ने प्रोवाइड किए हैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को जो पॉइंट्स, मैं वे आपको जल्दी जल्दी फटाफट पढ़कर सुनाता हूं। देखिए क्या कौन कौन से पॉइंट्स दिए हैं। विद्वानों की सभा को दक्षिण भारत में संगम कहा जाता है। सुदूर दक्षिण में कृष्णा व तुंगभद्रा नदियों के मध्य के क्षेत्र को तमिल प्रदेश कहा जाता है। मेगस्थनीज, स्ट्रेबो, प्लिनी एवं प्लॉटेमी की रचनाओं में पश्चिमी एवं दक्षिण भारत के साथ किए जाने वाले व्यापार का उल्लेख मिलता है। अशोक के शिलालेख में चोर, चेर एवं पांड्य शासकों का जिक्र है। कलिंग के खारवेल शासक के हाथी गुफा शिलालेख में भी संगम युग के बारे में जानकारी मिलती है। इस काल में दक्षिण भारत में तीन प्रमुख वंशों का शासन रहा, पांडेय, चेर एवं चोल। इस दौरान तीन संगम इन ब्रैकेट में है विद्वानों की सभाएं हुई और पीरियड दिया हुआ है फिर से ब्रैकेट में 100 to 350 ईसा पूर्व। पहला मदुरई में, इस संगम का कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है। दूसरा कपदापुरम में, इस सभा का एकमात्र उपलब्ध साहित्य है तोलक्कापियम, जो तोलक्कापियार द्वारा लिखित है। तीसरा मदुरई में, इस समय की कई रचनाएं उपलब्ध हैं जिनसे संगम काल की राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों का ज्ञान होता है। नेक्स्ट, इन तीनों संगमों में कुल 473 कवियों द्वारा रचित 2 to 8 to 9 कविताएं मिलती हैं। इन रचनाओं के मुख्य विषय हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट्स में दिया हुआ है, इन रचनाओं के मुख्य विषय हैं प्रेम, वियोग, युद्ध, भौतिक क्षेत्र के प्रशासन, राज्य, व्यापार एवं नैतिकता आदि। दोस्तों, इस लाइन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये खूबसूरती होती है पॉइंट्स निकालने की, कि कैसे आप पॉइंट्स पॉइंट्स के जरिए एक कंप्लीट जो सिनेरियो है, पर्सपेक्टिव है, वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इन रचनाओं के मुख्य विषय हैं प्रेम, वियोग, युद्ध तथा भौतिक क्षेत्र के प्रशासन, राज्य, व्यापार एवं नैतिकता आदि। संगम काल के मुख्य 5 महाग्रंथ हैं शिलिपद्दिकारम, इलांगो आदिगल द्वारा रचित, मणि मेकलाई कवि सत्तानार, शिवाका चिंतामणि, वलयपति और 5वां है कंडला केसी। रचनाएं बहुत हैं लेकिन उसमें से स्पेशली 5 की चर्चा यहां की गई है ताकि आप कम से कम इन 5ों को तो याद रख सकें और इसी से आपका काम बन जाएगा। यदि प्री में कुछ पूछ लिया जाता है तो अगर मैं आपको 50 की लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा तो याद रखिए आपके लिए किसी काम की नहीं होगी। इसके बारे में मैं बहुत संवेदनशील रहा हूं। नेक्स्ट, इस काल की रचनाओं की शैली शास्त्रीय की अपेक्षा लोक अधिक है। इन रचनाओं में काव्यात्मक उत्कृष्टता, जीवंत वर्णनात्मकता तथा उन्नत प्रभावशाली भाषा देखने को मिलती है। नेक्स्ट, रचनाओं का चरित्र धर्म निरपेक्षता लिए हुए है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति। राजा वंशानुगत एवं निरंकुश हुआ करता था, कृषि अर्थव्यवस्था की मूल थी, राज्य के राजस्व का मूल स्रोत कृषि कर था जो उत्पादन का 1/3 होता था, व्यापार कर भी राजस्व का स्रोत था, राजा की सभा जिसे मणंडम कहा जाता था न्याय की सर्वोच्च संस्था थी, पांडिचेरी भारत एवं रोम के बीच व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, निर्यात होने वाली मुख्य वस्तुएं थी काली मिर्च, मसाले, महीन वस्त्र, पुखराज, शराब, सूरमा, मूंगा तथा तांबा आदि। बड़े बंदरगाह वाले नगर विदेशी व्यापार की मंडियां थी। इस युग की एक सबसे बड़ी विशेषता थी उत्तर एवं दक्षिण भारत के सांस्कृतिक तत्वों का समन्वय। राजा का जीवन सभी के लिए आदर्श होता था। दक्षिण में भी वैदिक यज्ञ का प्रचलन हो चुका था। राज दरबारों में ब्राह्मण एवं पुरोहितों की पर्याप्त प्रतिष्ठा थी। ब्राह्मणों को उदारता पूर्वक दान दिए जाते थे। वेल्लार उत्तम कोटि के कृषक थे। सैनिकों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। पुलेयन नामक जाति रस्सी की चारपाइयां बनाती थी। मनगर लोगों का व्यवसाय डाका डालना था। एनियर शिकारियों की एक जाति थी। देखिए, अभी मैंने जो चर्चा की है कि ये रस्सी बनाते थे, ये सैनिक का उच्च स्थान था, ये डाका डालते थे, ये शिकारियों की जाति थी, क्या आपको इससे नहीं लगता है कि उस समय सामाजिक वर्ण व्यवस्था थी, सामाजिक वर्ग थे? क्लियर हो रहा है। यद्यपि स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था किंतु विधवाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। नृत्य एवं गायन अत्यंत विकसित कलाएं थी। ये भौतिक जीवन के बारे में है। धर्म पर वैदिक प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मुरुगन इन ब्रैकेट शिव के पुत्र कार्तिकेय इनके प्रमुख देवता थे। अन्य देवताओं में शिव, विष्णु, कृष्ण, बलराम, अर्धनारीश्वर तथा अनंत शायी थे। कर्म कांड प्रचलित थे, जो जादू टोना से जोड़ के देखिए, कर्म कांड प्रचलित थे क्योंकि जादू टोना के लिए सबसे ज्यादा कर्म कांडों की जरूरत होती है। ग्राम देवता की पूजा होती थी। अवतारवाद व भाग्यवाद के सिद्धांत उपस्थित थे। तो दोस्तों, ये मैंने संगम काल के कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। इन पॉइंट्स से मैंने संगम काल को पूरा कवर करने की कोशिश की है, लेकिन जो लेक्चर्स हैं डेफिनेटली उनमें तो और भी विस्तार के साथ बातें की गई हैं। खासकर मैंने आपके सामने एक नमूना पेश किया है, इस पर आप थोड़ा सा विचार करें, ये आपके लिए मॉडल का काम आएगा। खासकर मैंने इसीलिए आप लोगों के सामने ये बिंदु प्रस्तुत किए हैं। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड की जा रही है। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम है रानी प्रतिभा बिहार से और सिद्धार्थ राणा, आप दोनों का बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।